यस अलुका, वो सवाल करते हैं आपसे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्या सवाल कौन सवाल करता है? अहलुल किताब, अहले किताब। और खास यहां पे अहले किताब से मुराद कौन है? यहूदी, क्योंकि उन्होंने ये सवाल किया था। काब बिन अशरफ अपने साथ एक वफद को लेकर आया था और उसने ये कहा था, और गाहे बगाहे ये आते रहते थे और इस किस्म के सवाल करते रहते थे। क्या सवाल था? अंतु नज़िला अलैहिम किताब मिन असमा, कि उन पर तो उतार के लाए, आप उन पर उतार के लाएं कोई किताब आसमान से। किताब कौन सी? बाज़ जगह आता है कि ये कह रहे थे कि आप हमारे पास उसी तरह कोई लिखी हुई किताब लेकर आए ना, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पर जो तौरात उतरी थी ना, वो तख्तियों की सूरत में उतरी थी, ठीक है, वो तख्तियों पे लिखी हुई थी उनकी तौरात। तो आप भी ऐसा करें कि कुरान पूरा का पूरा तख्तियों पे लिखा हो, किसी किताब में लिखा हो, वो हमारे सामने आ जाए तो चलो हम देख लें, और फिर हमने देख के फिर हम बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे, फिर तो हम उसको मान ही जाएंगे कि पता हमें समझ आ जाएगी कि वाकई ये अल्लाह की तरफ से उतरा हुआ। एक तरह से सोचें आप, रिसालत के ऊपर ही तो उन वो भी ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि यानी हम नहीं मानते कि आपके ऊपर कोई कुरान उतरा है, हमें ऐसे दिखाएं। ये भी आता है कि इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई खत आए अल्लाह की तरफ से, वो खत के अंदर लिखा हो कि भाई आप ईमान लाएं इस नबी पे, तो फिर हम ईमान ले आएंगे, फिर हमारे सामने आ जाएगा ना, तो हम आप हमें इस तरह दिखा दें। अच्छा, अब ये वो एक दिन की बात नहीं होती थी, लेकिन जैसे काफिर थे या ये लोग थे, ये एक कॉन्स्टेंट एक इंसान के लिए आप देखें कि कितनी तकलीफ का बायस होता है कि उसकी एक, जैसे आप कहते हैं ना, आम लोगों को कहते हैं कि एक चिड़ बना देते हैं किसी की, जब वो नजर आए उस वक्त ही उसके को बात, जैसे काफिर कहते थे। आप मौजा क्यों नहीं दिखाते? ले आए ना को मौजा, आ क्यों नहीं रहे क्यामत? आप तो कहते हैं क्यामत आएगी, क्यों नहीं आ रही फिर? आप क्यामत कब आएगी ना, फिर बताएं तो सही जरा। तो किसी की इस तरह से छेड़ बना लेना, किसी को इस तरह से तंग करना, भी इन्होंने भी कोई मानना तो नहीं था, मगर ऐसे सवाल आके करना, ऐसी बातें आके करना कि दूसरे को कॉर्नर करना, और ये चाहना कि हम अब बताएं कि देखो हमने तो मान ही लेना था, लेकिन यही नहीं देखो लेकर आ रहे। और हम तो वैसे ही अहले किताब हैं, हम इनसे यही कह रहे हैं ना कि कोई किताब ला के दिखाओ, और तो हम नहीं कुछ कह रहे। तो देखो तो ये भी नहीं ला के दिखा रहे कि हमारे सामने ला के उतर रही हो हमारे सामने कोई किताब या कोई तख्तियां हो तो फिर हम मानेंगे। इस किस्म के जब मुतालबे होते थे, आप खुद अंदाजा कीजिए कि एक इंसान के लिए कितनी तकलीफ दे ये बात बन जाती। हम आम इंसान होते हुए हमारे कोई पीछे इस तरह पड़ जाए तो हम कहते हैं आए, और इंसान सच्चा भी हो तो कहते हैं आए कुछ ऐसा हो ही जाए कि इसको यकीन आ जाए। तो अल्लाह ताला ने इस तरह से नहीं करना था कि जो जो भाई कहता जा रहा है उसके उस मुताबिक मुतालबे पूरे होते जाए। अल्लाह ताला ने अपने नबी को तसल्ली दी, ए नबी आपको ये कहते हैं ना, इनकी तो करतूत ये हैं, इनके हालात तो ये हैं कि ये ऐसे लोग हैं, ये आपको क्या कहते हैं कि किताब आसमान से ले तो हम मान लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे। इनका हाल, इनका किरदार खोला गया आगे, ये पूरी आगे की आयात में इन यहूदियों का किरदार खोला गया कि ये आपसे किस मुंह से मांगते हैं कि ये आप हमें ला के दिखाएं किताब। ये तो वो लोग हैं, सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिका, इन्होंने तो मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़े बातों का मुतालबा किया था, इससे भी बड़े सवाल किए थे। क्या सवाल किए थे? जबकि इनके सामने तख्तियां आ गई हुई थी, तब कौन सा ये मान गए थे? तब भी इन्होंने कहा ओ मूसा तुम तो कहते हो कि तुम्हारा रब तुमसे बातें करता है, तो हमें भी ले जाके दिखाओ ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, फिर जाहिर है सारी कौम तो नहीं लेके जा सकते थे, 70 उनके जो बड़े बड़े थे लोग, बुजुर्ग थे, उनको मूसा अलैहिस्सलाम उस ग्रुप को लेकर गए अपने साथ, और ये हम सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं। वहां पे उन्होंने देखा भी कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला की बातचीत, तो फिर उसके बाद कहते नहीं अब तुम हमें अल्लाह को दिखाओ, फकालू अरिन अल्लाह जहरत, हमें अल्लाह को सामने दिखाओ ना तब हम मानेंगे। यानी ये तो ऐसे लोग हैं, इस किस्म के लोग हैं कि इनके मुतालबे देखो ये किस मुंह से आपसे ये मुतालबा कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं इनके सामने तख्तियां आई थी तब नहीं माना, इन्होंने तो कहा हमने अल्लाह को देखना है, तो फिर क्या हुआ था उस वक्त? फाखजतहुम सायकतु बिजुल्मिहिम, उनके जुल्म की वजह से। उनका जुल्म क्या था? उन्होंने अल्लाह का इनकार तो नहीं किया था। ऐसी बदतमीजी की बात करना अल्लाह ताला के बारे में, ऐसी बात करना के शक करना उसके उसकी तरफ से कि ये रसूल आए हैं, इसमें ये जुल्म ही था ना। तो उनकी ये जो बात उन्होंने की ना, अरिना अल्लाह हजारत, लेकिन ये बात तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी की थी कि अल्लाह मुझे अपना आप दिखा ना, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तो नहीं कड़क आई, फिर इनके ऊपर क्यों आई? इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम, बात तो वही थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का जो ये अल्लाह ताला से दुआ करना था, दरख्वास्त करना था, वो तो अल्लाह ताला के शौक दीदार में था, शौक में था कि मैं अल्लाह तुझे देखूं तो सही। इनका किस लिए था कि हमें दिखा ना तो तब हम मानेंगे। बात कभी कभी एक ही जैसी होती है, लेकिन जो नीयतें फर्क फर्क होती हैं उसके मुताबिक ही उनके अंजाम भी होते हैं। फिर बाज दफा कोई एक बात बंदा भी वही बात कर रहा होता है, दूसरा भी वही बात कर रहा है, लेकिन एक के बात करने की नीयत ही कुछ और है और दूसरे की कुछ और है। एक हमदर्द है और दूसरा बदख्वाह है। फर्क होता है ना, हमारी जिंदगियों में भी ऐसा फर्क होता है ना, यही है यहाँ पे। तो बाज बातें भी इंसान के लिए वबाल बन जाती हैं। अल्लाह ताला ने इसको जुल्म कहा है, मुंह की बात थी ना, कोई एक्शन तो नहीं उन्होंने किया था। तो मुंह की बातें इंसान को देखे कहाँ तक कभी ले जा देती हैं कि कड़क आई और मर गए वो सारे के सारे। अब मूसा अलैहिस्सलाम देखे, पैगंबर जो होते ना उनके ऊपर भी बड़ी आजमाइश होती है। एक तरफ कौम है, आई कि अब मैं जाके कौम को क्या बताऊंगा, वो तो सारे ही पलट जाएंगे कि मूसा जो वो कहाँ गए, जो हमने इतने बड़े बड़े हमारे लोग थे वो किधर छोड़ आए, तुम सारे मार दिए, अल्लाह उनको क्या जवाब दूंगा। अब देखिए ना, एक पैगंबर के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कौम भी सही रास्ते पर रहे, सारी जिंदगी का उनका मिशन ही ये होता है, कौम ही ना उलट जाए, कौम ही ना पलट जाए। दूसरी तरफ रब उसको भी राजी रखना है। तो अब वो अल्लाह ताला से फरियादें करने लगे, अल्लाह इन चंद ना समझों की वजह से तू सबको तो ना सजा दे, अल्लाह इनको वापस जिंदा कर दे। अल्लाह ताला ने इनको वापस जिंदा कर दिया मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पे, हालांकि ये अल्लाह का तरीका नहीं है। सुम्मत तखज़ुल अजला मिन बादी मा जाअतहुमुल बय्यिनात, तो फिर इनका हाल दूसरा सुने अल्लाह ताला ने। अब इनके सारे जराइम यहाँ पे खोले इस बात के जवाब में। अब ये सारी जो बातें आ रही है ना, ये किसका जवाब है कि वो आपको कहते हैं ना कि आसमान से किताब ला के सुनाओ, दिखाओ हमें, तो ये इनकी जरा हरकतें देखें। फिर उसके बावजूद कि इन्होंने इतनी निशानियां देख ली थी, कौन सी निशानियां इन्होंने देखी? इन्होंने भाई अपने सामने देखा समुंदर को फटते हुए, इन्होंने देखा फिरौन को गर्क होते हुए, इतनी बड़ी निशानियां, इन्होंने मनो सलवा को देखा, तो फिर भी इनका ये हाल था कि सुम्मत तखज़ुल अजल, वो बछड़े को लेकर तो उसको सोने का एक बछड़ा बना लिया, उसकी पूजा शुरू कर दी। हम भी तो कई वैसे निशानियां देखते हैं दुनिया में, कई अजाब आते देखते हैं, कई चीजें देखते हैं, हमें कौन सा होश आता है, अपने सामने देख रहे होते हैं, देखो अल्लाह की पकड़ आ गई है, हमें टस्से मस नहीं होते, कहते कोई परेशानी की बात ही नहीं, जो चल रहा है ना करते रहो। वो जैसे मुशरिकीन ने मक्का कहते थे ना, ये तो गर्दिशे जमाना है, तो आज हम भी कहते हैं गर्दिशे जमाना है, ये तो चीजें आती रहती हैं, बीमारियां भी आती हैं, कभी कोई कहत भी आता है, महंगाई भी आती है, तो कोई मसला नहीं है भाई। तो उन्होंने रोशन निशानियां देखी, इसके बावजूद बछड़े को पूजा करने लगे। फाफाउन आंदा लिखा, हालांकि ये इतना बड़ा गुनाह था, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ने फिर भी उनको माफ कर दिया, जिसके ऊपर इनको खत्म कर दिया जाना चाहिए था। वह आतेना मूसा सुल्तान मुबीना, और मूसा अलैहि सलाम को हमने दी दलील, खुली दलील दी थी। मैंने आपको बताया गलबा भी इसका मतलब हो सकता है, दलील भी हो सकता है, कि मूसा अलैहि सलाम के दलील की कुव्वत ही, दलील में भी एक कुव्वत होती है ना, एक पावर होती है कि आप बात करें तो दलील के साथ करें, और गलबा भी था। मूसा अलैहिस्सलाम को वाजे दलीलें अल्लाह ताला ने अता फरमाई, ये जो बात करते थे वो ठोस होती थी, इसके बावजूद इन लोगों के हाल क्या थे, और फिजिकली भी गलबा दिया उनको मूसा अलैहिस्सलाम को। और रफ़अना फ़ौक़हुमुत्तूर, और उनके ऊपर उठाया हमने तूर, किन के ऊपर? इन्हीं यहूदियों के ऊपर। अच्छा, अब ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थे, ये वो यहूदी थोड़ी थे जो मूसा अलैहि सलाम के जमाने में थे। फिर क्यों कहा गया कि इनके ऊपर हमने ये किया इनके? क्योंकि देखिए, जब एंडोर्स करते हैं ना आप किसी की बात को, मसलन आप भी एग्री करते हैं उससे, ये अपने आबाओ अजदाद के इन सारे कामों से एग्री करते थे, उनको बुरा नहीं समझते थे, और ये नहीं कहते थे, कंडेम नहीं करते थे कि ये तो बुरी बात है, उन्होंने क्यों ऐसे किया, उन्होंने गलत किया, ऐसे नहीं कहते थे। वो तो इसके ऊपर बड़े फखर वाले बात करते थे और इसको ओन करते थे, तो फिर तो ये उन्हीं में से हुए ना। जैसे कोई अपने आबाओ अजदाद की गलतियों को भी कहे कि नहीं वो तो ठीक थे, नहीं उन्होंने तो ऐसे, तो फिर वो भी उन्हीं में से है। तो इनके ऊपर तो तूर नहीं लाके खड़ा किया गया था, उनके ऊपर किया गया था, बी मीसाकिहिम, उनके मीसाक की वजह से। कौन सा मीसाक था? उनसे ये अहद लिया गया था कि आपने तौरात को मानना है, शरीयत को मानना है, आप दीन की तरफ आएंगे। उन्होंने कहा हमने नहीं मानना, किताब को नहीं मानना हमने, अहद को ही तोड़ दिया, ये अहद किया हुआ था ना उन्होंने। तो जब इन्होंने ये अहद तोड़ा तो अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ को इनके ऊपर खड़ा कर दिया, तो फिर तो अपनी जान के लाले इनको पड़ गए, फिर तो नीचे गिर गए जमीन पे और ऊपर देखते जाएं और साथ कहते जाएं कि हाँ हम मानते हैं, हाँ हम मानते हैं। कम चीजें ढिटाई की नहीं उन्होंने की नहीं। वकुलना लहुम उदखुलुल बाबा सुज्जदन, ये तो वो लोग हैं, यानी ये सारे इनके कारनामे बताए जा रहे हैं। मुख्तसर यहां पे है, हमने तफसील से सूरह बकरा में पढ़े। हमने जब इनसे कहा कि तुम दाखिल हो जाओ दरवाजे में सजदा करते हुए, और आपको पता है कि जब शहर को कॉन्कर कर लिया था तो उसके बाद इनको कहा गया था झुकते हुए सजदा करते हुए, का मतलब ये नहीं कि सजदे में चले जाओ, मतलब झुकते हुए जाओ, आजी के साथ जाओ। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, घिसटना शुरू कर दिया, अपने रानों के बल घिसटना शुरू कर दिया। इनसे कहा गया वकुल्ला नोम ला तादू फिस सब्त, इनसे कहा गया तुमने सब्त के दिन की रिस्पेक्ट करनी है। कैसे? सब्त के दिन आपने कोई कारोबार नहीं करना, कोई कामकाज नहीं करना। तो आपको पता है कि सब्त के दिन की इन्होंने कैसे वायलेशन की, इन्होंने सब्त के दिन ही मछलियां पकड़ने शुरू कर दी, क्योंकि उस बस्ती में जो ये इस कबीले के कुछ कबीले रहते थे इनके, और वहां पे उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो ही क्या था, वो मछेरे थे, तो मछलियां पकड़ते थे। अब उनके लिए तो ये बड़ा मुश्किल था कि हाय एक दिन हम, इस दिन तो बड़ी मछलियां आती हैं, हम इस दिन ना पकड़े, तो उन्होंने हीले बहाने करके और मछलियां पकड़ना शुरू कर दी। हीला साजी तो बहुत इसमें माहिर है। तो तुम्हें कहा गया कि उनको कहा गया कि हद से ना बढ़ो, तो फिर वो उसमें भी हद से बढ़ गए। एक तरह से समझ ले चार शीट है जो अल्लाह ताला दे रहे ना। नंबर वन इन्होंने ये किया, नंबर टू इन्होंने, इनकी देखो ये किस तरह से आपसे, इनको कोई जेब देता है कि ये आपसे आगे कहें कि आप हमें नाजिल करके दिखाएं? इतनी इतनी बड़ी निशानियां देख के भी ये नहीं माने थे। वाखदना मिनहुम मीथाकन गलीजा, और लिया हमने इनसे पुख्ता अहद, पक्का अहद, ये जो तूर के दामन में इनसे मिसाक लिया गया था, पहाड़ को जड़ से उखाड़ के इनके सरों पे खड़ा कर दिया गया था, आपने दीन के ऊपर चलना है, आपने इसको मानना है, तो इन्होंने सारे तोड़ दिए, इताहत का अहद ही तोड़ दिया। तो अब ये बताया गया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं, और फबिमा नकदीहिम मीसाकहुम, बवजह इनके तोड़ने के अपने अहद को। ये असल में यहाँ पे था कि इनके ऊपर लानत की गई है, जो हम सूरह बकरा में देखते हैं, और उस लानत का, और या आगे जो आ रहा है कि इनके दिल पे मुहर लगा दी गई, इसका सबब क्या है कि इन्होंने इन मीसाकों को तोड़ दिया जो इन्होंने वादे किए हुए थे अल्लाह ताला के साथ। वह कुफ्रिहिम भी आयात अल्लाह, और अल्लाह की आयात का इनकार कर दिया। अल्लाह की आयात का इनकार ऐसे नहीं किया कि हम अल्लाह की आयतों को मानते ही नहीं है, जब उस अहकामात पे चलना ही नहीं तो इनकार ही है ना, तो ये मानना ना ही हो गया ना। जिस चीज को आप मानते हैं उसको तो आप वो करते हैं, वो काम आपने अपनी अम्मी की बात मानी, उन्होंने कहा पानी का ग्लास लाओ तो आप उठ के गए और लेकर आए। तो ना मानना कभी जुबान से होता है और कभी अमल से होता है। हमने तो नहीं कोई अहद किया अल्लाह ताला के साथ, हमारा भी अहद है, ये कलमा जो है ना कलमा तैयबा, जिस कलमे को पढ़ के इंसान मुसलमान होता है, ये बहुत बड़ा अहद है, बहुत बड़ा मीसाक है जो आपने अल्लाह से कर लिया। और इसी मीसाक की वजह से अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा, इस कलमे की वजह से। लेकिन आप बताइए, अगर कोई इस कलमे पे चले ही ना, इस कलमे को जुबान से तो पढ़े तोते की तरह, रटा हुआ तो उसने है कलमा, लेकिन उसको ये पता ही नहीं है कलमे में है क्या। कलमा किस चीज का तकाजा करता है, क्या रिक्वायरमेंट है इस कलमे की, क्या करने को कहता है, इसकी अमली सूरत क्या होगी, इसके बाद इसको मानने वाले की जिंदगी कैसी होगी, इसका कुछ भी नहीं पता। ये मैं क्या कह रही हूं, कितनी बड़ी बात को मैं मान रही हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद इला और भी है, वो भी इला, वो भी इला, वो भी इला। तो अहद को तोड़ना अल्लाह के यहां मामूली बात नहीं है। इंसानों को इंसान के साथ भी किया हुआ अहद को नहीं तोड़ना, कहां ये कि अल्लाह के साथ किया हुआ अहद तोड़ दे। वकतलीमुल अंबिया भी गैर हक, और इन्होंने नबियों को कत्ल किया, उन्होंने नबियों का कोई कसूर नहीं था ना, हक कत्ल करते थे कि जी ये हमें मना क्यों करते, इनको ये बात बुरी लगती थी कि हमें क्यों ये नसीहत करते, तो उनका काम ही तमाम कर दिया, रास्ते से ही हटा दिया उनको। जैसे आज नबियों के वारिसों को हटाया जाता है, नबियों के वारिस कौन है, उलमा, जो उलमा हक की बात करते हैं उनको रास्ते से हटा देते हैं। क्यों रास्ते से हटाते हैं, उनकी बात नहीं ना अच्छी लगती कि हमें क्यों मना कर रहे हैं, ये क्यों हमारी बुराइयां बता रहे हैं लोगों को, ये क्यों कह रहे हैं कि ये गलत काम है, तो इनका काम ही तमाम कर दो। अल्लाह माफ करे, आज के वक्त के अंदर अंबिया होते तो इस उम्मत ने काम तो नहीं करना था। आज भी देखें दुनिया में कितने मुल्कों में उलमाए हक को कैद में डाला गया, पता ही नहीं उनका कहां से कहां उनको पहुंचा दिया। वकौलिहिम कुलूबुना गुल्फ, और वो कहते थे हमारे तो दिल गिलाफों में है। क्या मतलब इसका हमारे दिल, लेकिन जो कोई चीज आप संभाल के रखते हैं ना उसको गिलाफ में डाल देते हैं। तो वो कहते हैं हमारे संभाल के रखे में, यानी हमें सारी हिदायत मिल चुकी है, संभले में है हमारे दिल, हमें और हिदायत की थोड़ी जरूरत है। उनको जरूरत होगी जिन जो बेहिदायतें हैं, हमें क्या जरूरत है, हमें तो पहले से हिदायत याफ्ता है। अल्लाह अकबर, महफूज है हमारे दिल। आज भी आपको पता है कई लोगों को जब कुरान की तरफ दावत दी जाती है ना, तो कहते हैं हमें कुरान की क्या जरूरत है, हमें पहले से सब कुछ आता है, हमें क्या सिखाएंगे, क्या ऐसा कुरान के अंदर जो हमें नहीं पता। सबको पता है नमाज रोजा कैसे करना है, वो समझते हैं पता नहीं कुरान के अंदर ये तरीके लिखे हैं। तो ये हाल हमारा भी आज है कि हम कहते हैं कुलूबुना गुल्फ, हम तो पहले ही हिदायत याफ्ता है, हमने और क्या सीखना है कुरान से। अल्लाह ताला हमें माफ करे। तो जब इनको कोई हिदायत की बात बताने के लिए कही जाती थी तो ये आगे से जवाब देते थे, हमें जरूरत ही नहीं है आपके ये सेलम की। बल तबा अल्लाह अलैहा बिकुफ्रिहिम, बल्कि मोहर लगा दी अल्लाह ने उन पर, किस वजह से, बिकुफ्रिहिम, बवजह उनके कुफर के, इनकी इस किस्म की नाफरमानियों के। मानने के बजाय जब कोई अड़ जाए किसी चीज के ऊपर और कहे मैंने नहीं मान के देना, तो मोहर लग जाती है दिलों पे। देखिए दिलों में भी एक एक समझ लें कि एक लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है कोई चीज मानने की। अगर वो कैपेबिलिटी खत्म हो जाए ना, तो दिल के अंदर हिदायत नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल, ये बाजू है हमारे साथ, अब ये बाजू चाहे लगा हुआ साथ, लेकिन ये शल हो जाए, इसको कोई ऐसा मसला हो जाए, अल्लाह ना करे कि फ्रीज हो जाए, तो अब क्या इसके अंदर काम करने की सलाहियत नहीं रहेगी। दिल हिदायत का मरकज है, सेंटर है। अब इस सेंटर के अंदर अगर ऐसी कोई मसले हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एक हदीस में जैसे क्या आता है कि इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पे स्याह डॉट पड़ जाता है, ब्लैक डॉट। ब्लैक डॉट हम चेहरे पे पड़ जाए तो हम कितने परेशान हो जाए, बार बार पूछेंगे साफ कर करके भी, आए नजर तो नहीं आ रहा, अब लगा तो नहीं हुआ, है ना, कितने कॉन्शियस हो जाते हैं हम। लिपस्टिक दांत पे लग जाए तो कितने कॉन्शियस हो जाते हैं, बार बार पूछते हैं अब तो नहीं साफ हो गई कि नहीं। दिल पे स्याह नुक्ता लग जाता है जब इंसान गुनाह करता है, और अगर वो अल्लाह ताला से तौबा कर ले तो वो नुक्ता धुल जाता है, समझ लें आपने सफाई कर ली उसकी। अगर तौबा नहीं करता फिर और गुनाह करता है, फिर और डॉट पड़ जाता है, फिर और गुनाह करता है, फिर तौबा फिर भी नहीं की, फिर गुनाह किया फिर और पड़ गया, फिर नहीं तौबा की फिर और गुनाह किया, फिर हाँ तौबा कर लेंगे जब बूढ़े होंगे, अभी क्या, अभी मेरी को तौबा के दिन, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैंने ये मौज करनी है, अभी तो मैंने ये सारे काम करने खुल के करने, तो डॉट लगते जा रहे हैं क्योंकि तौबा का इरादा ही, डॉट लगते जा रहे लगते जा रहे। और एक दिन वो आता है कि पूरा दिल जो होता है वो क्या होता है, स्याह काला हो जाता है, खुद सोचे ना चेहरे के ऊपर डॉट लगने लगे, इतने 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 नुक्ते लगते ही जाए लगते ही जाए, तो क्या हाल हो, कितने बदनुमा लगे चेहरे, और दिलों का क्या हाल है जिन पे अल्लाह की नजर है। एक दिन फिर जब वो काला स्याह हो जाता ना, तो उसमें कोई खैर कोई हिदायत पाने की सलाहियत खत्म हो जाती है, उसकी कैपेबिलिटी खत्म हो गई ना, अब सुनाते रहे अब नहीं जाएगी बात अंदर। फला युमिनून इल्ला कलीला, तो इनमें से नहीं ईमान लाएंगे मगर बहुत थोड़े, और वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में बहुत ही थोड़े यहूदी ईमान लाए थे, 10 तक की गिनती आती है कि 10 तक थे सिर्फ, इतने कम, ईसाई काफी ईमान लाए थे लेकिन यहूदी नहीं। और थोड़ा ईमान लाने का मतलब एक ये भी है कि बहुत थोड़ा ईमान लाते हैं, यानी सिर्फ अपने नबी पे ईमान लाए बाकी किसी पे नहीं लाए। वह भी कुफ्रिहिम, और उनके कुफर की वजह से, वह कौलिहिम आला मरियम बहतान नदीमा, और उनके मरियम अलैहिस्सलाम पे बहतान, बड़ा बहतान बांधने की वजह से, यानी इस सारे की वजह से अल्लाह ने इनके ऊपर लानत की, सारे की वजह से अल्लाह ताला ने इनके दिलों को सील कर दिया, अब हिदायत नहीं इनके तक पहुंच सकती। तो इन्होंने कुफर क्या किया, अल्लाह की आयात का इनकार किया, इनके सामने मोजे आए इन्होंने मोजों का इनकार किया, और इन्होंने, इनका ये कहना मरियम अलैहिस्सलाम पे कि उन्होंने बहुत बड़ा बहतान बांधा, और वो बहतान क्या था, अल्लाह ताला माफ फरमाए कि इन्होंने कहा कि हजरत मरियम के किसी के साथ ताल्लुक, यानी शादी भी नहीं हुई और किसी का ताल्लुक हुआ और उनसे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो नऊज़ु बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को वलदु जिना कहा। ये तो आज ही ये यहूदियों का और ईसाइयों का इतना गठजोड़ है, वरना अगर आप तारीख उठा के देख लें तो ये तो एक दूसरे के बैर होते थे कि ये देखें आप एक के नबी को कोई कह रहा है इस तरह से तो कैसे उनको पसंद कर सकते। तो इनका ये कॉल भी लानत का सबब बना, वकौलिहिम, और उनका ये कहना, उनका एक और कॉल, अब देखिए ये सारे कॉल है ना शुरू में, अल्लाह ताला ने क्या बात बता दी, कॉल की बात शुरू में आई और ये कॉल ही बार बार आते जा रहे हैं यहाँ पे, उनका ये कहना ही, ये मुंह की बातें है ना, कई मुंह की बातें अल्लाह ताला को कितनी नापसंद है। अब देखिए ये बोहतान बांधना भी जुबान का ही अमल है ना, ये भी एक बात ही है, आप किसी को कुछ कह तो नहीं रहे, मार नहीं रहे, कत्ल नहीं कर रहे, लेकिन बोहतान बांध दिया, ये कत्ल से भी बाज दफा बहुत ज्यादा तकलीफ दे हो जाते। उनका ये कॉल, इन्ना कत्ल नल मसीहा ईसा बिन मरियम, हमने कत्ल कर दिया है मसीह को जो बेटे हैं मरियम के, आप देखेंगे सारे कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत उनकी माँ की तरफ की गई है, और वजह यही बताने के लिए कि उनके वालिद नहीं थे, वरना हमेशा इंसान की निस्बत उसके वालिद से की जाती है, ए फलां बिन फलां उसके वालिद का नाम लिया जाता है। और फिर आगे रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह ये उनका कॉल नहीं था, ये है यहाँ पे अल्लाह ताला की बात है, वो तो ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल मानते ही नहीं थे, तो उन्होंने ये बात कही, कितनी बड़ी गुस्ताखी की बात कही कि हमने तो कत्ल कर दिया, बड़ा फखरिया कहते थे हमने तो कत्ल कर दिया ईसा अलैहिस्सलाम को, और अल्लाह ताला ने फरमाया जो अल्लाह के रसूल हैं उनको ये कहते थे ये इन्होंने कत्ल किया। और रसूल को कोई कत्ल करने का, जिन कौमों ने रसूलों के कत्ल करने की प्लानिंग की फिर उसके बाद उनके ऊपर देखें कैसे अजाब आए, तो इन्होंने ये काम किया था, इनके ऊपर तो अजाब आया नहीं, अब इनके ऊपर आएगा जिस वक्त के ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे। तो ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश भी आजमाइश बन गई कि उसको भी बोहतान कह दिया, और उनका दुनिया से उठ के जाना भी आजमाइश बन गया कि इन्होंने कहा कि हमने कत्ल किया है। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वमा कतलूहू, उन्होंने हरगिज़ नहीं, इन्होंने कत्ल नहीं किया उनको, वमा सलबूहू, और ना सूली चढ़ाया। ईसाइयों ने ये मान लिया कि हाँ उनको सूली पे चढ़ाया गया। वो कहते थे, बाज़ ईसाइयों का यह अकीदा है कि वो सूली पे चढ़े, फिर वो बेहोश हो गए, फिर उसके बाद उनको फिर वो होश में आए। बाज़ कहते हैं कि वो फौत हो गए थे, फिर उसके बाद उनको कब्र में दफनाया गया, फिर वो कब्र से खड़े हो गए, उठ गए कब्र से। तो ये सारी बातें गलत हैं, उनको सूली पे चढ़ाया ही नहीं गया। ये जो इनकी इनके जो मजहब में हर वक्त सूली दिखाते हैं ना, हमारा ये अकीदा है कि उनको सूली नहीं चढ़ाया गया। इन्होंने हर जगह उनके चर्चेज में देख लें, इनके इन्होंने उनको सूली पे चढ़ाया हुआ दिखाया होता। हम कहते हैं अल्लाह ताला अपने रसूलों की हिफाजत करता है, रसूलों को कभी कोई गजल नहीं पहुंच सकती जो अल्लाह के रसूल होते हैं। नबियों के कत्ल हुए हैं लेकिन रसूल को कभी कोई कत्ल नहीं कर सका। वलाकिन शुभ भी हलाहू, लेकिन शुबे में डाल दिया। एक इसका मतलब है शुबे में डाल दिया गया उनके लिए, कि ये मामला ही उनके लिए डाउटफुल हो गया कि क्या हुआ क्या था। मैं आपको बताऊंगी अभी कि क्या हुआ, लेकिन ये इनके लिए मामला शुबे का हो गया, शक का हो गया कि क्या वो कत्ल हुए कि नहीं कत्ल हुए, क्या हुआ, कंफर्म किसी को भी नहीं है इनमें से। दूसरा इसका माना है कि तशबी, यानी शबी डाल दी गई, तशबी नहीं शबी डाल दी गई। शबी का मतलब क्या, कि सूरत उनकी वाली डाल दी गई किसी और के ऊपर, और कत्ल नहीं हुए वो, ना उनको सूली चढ़ाया गया। अब ये रिवायात बहुत सारी इसके मुतल्लिक आती हैं। एक रिवायत में ये आता है कि ये यहूदी जो थे, ये दमिश्क के बादशाह के पास गए, वो सितारों की पूजा करने वाला था, और उससे बहुत रोए पीटे और ईसा अलैहि सलाम के खिलाफ उकसाया और कहा कि बड़ा ये फसादी है, लोगों को बहका रहा है, रोज नए नए फितने खड़े कर देता है, अमनो अमान में भी खलल डाल रहा है, लोगों को बगावत पे उकसा रहा है, ये आपके खिलाफ बगावत करना चाहता है लोगों को। तो बादशाह जो होते थे वो तो जाहिर है फिर वो कहेंगे कि हमारे खिलाफ बगावत होने लगी। तो बादशाह ने अपने गवर्नर को जो बैतुल मकदस में था उसको फरमान लिखा कि ईसा अलैहि सलाम को गिरफ्तार कर लिया जाए और सूली चढ़ा दिया जाए, और उनके सर पे कांटों का ताज रख के लोगों को इसके फसाद से निजात दिलाई जाए। तो उसने फरमाने शाही पढ़ के यहूदियों के एक ग्रोह को अपने साथ लेकर उस मकान पे वो गए जहां पे ईसा अलैहि सलाम थे, उसको उन्होंने घेर लिया। तो ईसा अलैहि सलाम के साथ उस वक्त 12-13 या उससे ज्यादा कुछ लोग थे। जुमे के दिन असर के बाद उन्होंने मुहासरा किया, हफ्ते की रात तक उन्होंने मकान को घेरे में लिए रखा। जब ईसा अलैहि सलाम ने ये महसूस कर लिया कि अब वो मकान में घुस के गिरफ्तार कर लेंगे या आपको खुद बाहर आना पड़ेगा, तो आपने अपने हवारियों से फरमाया, तुम में से कौन इस बात को पसंद करता है कि उस पर मेरी शबीह डाल दी जाए, यानी वो मेरी मुशाबहत हो जाए, उसकी सूरत अल्लाह ताला मेरी जैसी बना दे और वो गिरफ्तार हो जाए और मुझे अल्लाह ताला उठा ले, तो मैं उसके लिए जन्नत का जामिन हूँ। उस पर एक नौजवान ने कहा, मुझे ये मंजूर है। लेकिन ईसा अलैहि सलाम ने उसको इस काबिल नहीं समझा कि ये कमजोर सा है, दोबारा यही पूछा, तीसरी दफा यही पूछा, हर दफा सिर्फ वही तैयार होता था और कोई नहीं होता था। तो अब आपने ये मंजूर फरमा लिया, देखते ही देखते उसकी सूरत ऐसी बदल गई कि बिल्कुल ये लगने लगा कि यही ईसा अलैहि सलाम है, और छत की तरफ से एक जैसे सुराख होता है वो हुआ और ईसा अलैहि सलाम ऊंघ की हालत में आसमान पे उठा लिए गए। अब जब ये उठा लिए गए तो बाकी हवारी जो थे वो घर से बाहर निकले। यहूदियों की एक जमात ने उस हवारी को पकड़ लिया जिस पर ईसा अलैहि सलाम की शबाहत डाली गई थी, ये कि ये शायद ईसा अलैहि सलाम है, और रातों रात उनको सूली पे चढ़ा के और उनके सर पे कांटों का ताज रख दिया। अब यहूदी खुशियां मनाने लगे कि हमने तो कत्ल कर दिया ईसा अलैहि सलाम को। अच्छा, अब क्यों इसमें शुबा फिर बाद में क्यों हुआ, इसलिए कि जब उन्होंने सूली चढ़ा दिया तो उसके बाद उन्होंने देखा कि ये जो जो जितने एक तो लोग थे उस जगह पे जो इनके हवारी थे, वो जितने भी थे 12 थे या 13 थे, तो एक कम है, अगर ये ईसा है तो वो हवारी कहाँ है, और अगर ये हवारी है तो फिर ईसा अलैहि सलाम कहाँ है। बाज जगह पे ये भी आता है कि एक हवारी ने गद्दारी की और उसने जाके उनको इतला दी कि भाई यहां पे हैं ईसा अलैहि सलाम छुपे हुए चंद टकों की खातिर। और वो लोग जब आ गए और ये हवारी अंदर आया तो इसके ऊपर अल्लाह ताला ने शबीह डाल दी ईसा अलैहि सलाम की, वो उसको पकड़ के ले गए। बाद में उन्होंने कहा कि ये वो हमारा बंदा कहाँ गया जो हमें जासूसी करके यहां तक लेकर आया था, अगर ये ईसा अलैहि सलाम है तो वो कहाँ गया, और अगर ये ईसा नहीं है तो फिर ईसा अलैहि सलाम किधर है, क्योंकि पूरी बॉडी जो थी वो तो उस बंदे की थी, उस हवारी की थी, सिर्फ जो शक्ल थी वो ईसा अलैहि सलाम की थी। तो अब उन एक शुबा हो गया ना कि हुआ क्या है, ये माजरा क्या है। और ये भी इब्ने अब्बास की रिवायत में आता है कि जब अल्लाह ताला ने ईसा अलैहि सलाम को आसमान पे उठाना चाहा, आप घर में आए और घर में 12 हवारी थे, आपके बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। तो ये मैंने इसलिए आपको बात बताना चाह रही हूँ कि जब ईसा अलैहि सलाम वापिस भी आएंगे तो इसी तरह पानी के कतरे उनके बालों से टपक रहे होंगे कि जैसे उस वक्त जब वो उठाए गए थे। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया लेकिन शुब्बिहा लहुम, शुबा डाला गया, शक्लो सूरत वो बना दी गई। वह इन लदी नख्तलफू फी लफी शक में, और वो लोग जिन्होंने इख्तलाफ किया इसमें उसमें शक में है। अब ये जिन्होंने इख्तलाफ किया भाई कि ये क्या ईसा अलैहि सलाम कत्ल हुआ है, किसी ने कहा सलीब चढ़े, किसी ने कहा कुछ भी नहीं हुआ है, वो अब शक में पड़े हुए कि हुआ क्या है, असल चीज क्या है, यकीनी इल्म उनको नहीं है, ना यहूदियों को ना ईसाइयों को। मा लहुम बिही मिन इल्म, नहीं उनके लिए इसका कोई इल्म, इल्लत्तिबा अज़्ज़न, मगर गुमान ही है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, बड़ी बातें बना ली उन्होंने गुमान की बेस पे। मा कतलू हुई यकीना, मगर यकीनी बात एक है, जितनी भी बातें बताई गई हैं जितनी भी उन्होंने बनाई हैं उनमें एक बात तो कंफर्म है, और वो ये है कि उन्होंने ईसा अलैहि सलाम को कत्ल नहीं किया। फिर ईसा अलैहि सलाम कहाँ चले गए, क्या बना फिर उनका, बर्रफ़अहुल्लाहु इलैह, बल्कि अल्लाह ताला ने उठा लिया उनको अपनी तरफ। रफ़अहु का माना क्या होता है, उठा लेना, बुलंद कर देना। बाज लोगों ने जो कि इस बात को नहीं मानना चाहते थे अपने एजेंडास की वजह से, और उनका नाम भी मैं ले लेती हूँ, कादियानी लोग खास तौर पे, क्योंकि उन्होंने बाद में ये कहा कि मिर्जा कादियानी जो है वो ही ईसा अलैहि सलाम वापिस आए, दोबारा पैदा हुए हैं, मसीह मौऊद उसको कहते हैं वो, तो वो तो इस बात को मानते ही नहीं है कि ईसा अलैहि सलाम को उठाया गया। इसी तरह बाज मुसलमान भी इस बात का इनकार करते हैं, जो खास तौर पे हदीस के मुनकर लोग हैं वो इस बात का इनकार करते हैं, क्योंकि बाकी ये अकल में उनके तो पढ़ने वाली बात है नहीं, उनको मौजजात पे तो यकीन होगा नहीं, तो जो जो बात उनको अकल में नहीं पड़ती वो हदीस में अगर आ जाए तो फिर वो कहाँ उसको मानेंगे, वो तो कहते हैं हम तो वो ही बात मानते हैं जो हमारी अकल के मुताबिक है, जो समझ आने वाली है, और ये हमें तो बात नहीं समझ आती। वो भी कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे रफ़ाउल्लाह का मतलब ये है अल्लाह ने उनका जिक्र बुलंद कर दिया, और रफ़ाउल्लाह का मतलब ये है कि वो फौत हो गए थे तो फिर अल्लाह ने उनकी रूह को उठा लिया अपनी तरफ। तो भाई इसके अंदर कौन सी इतनी बड़ी बात है, रूहें तो सबकी उठ जाती हैं, फिर जो भी इंसान फौत होता है इसमें कोई ईसा अलैहि सलाम की खास बात होने का क्या मकसद है कि यहाँ पे कहा गया उनकी रूह को उठाया गया, तो जो भी फौत होता है अंडरस्टूड बात है उसकी रूह उठा ली जाती है, आसमानों की तरफ जाती है उसकी रूह, इसमें फिर क्या प्रॉब्लम की बात है, इसके अंदर कौन सी इतनी बड़ी बात थी जिसको मेंशन किया गया हो। अल्लाह ताला ने साफ वाजे फरमाया कि उनको ना कत्ल किया गया बल्कि उनको उठा लिया गया, और उठाना ये वो ही उठाना होगा ना जो जिस्म और रूह दोनों के साथ है, ना कि ये हो गया जिस्म तो यहीं रह गया और रूह ऊपर उठ के चली गई। और आपको हैरत होगी कि मैं पढ़ रही थी कि ये इनकी जितनी भी बाइबल्स है ना, बल्कि आप इस वर्ड को बेशक आप सर्च भी कर सकते हैं डिक्शनरी में, इनके सब बाइबल्स में ईसा अलैहि सलाम के बारे में लिखा हुआ है असेंशन का लफ्ज़, ASCENSION, असेंशन। और इसका एग्जैक्ट माना क्या बनता है? रफा, बुलंद करना, असेंड करना। और वही कुरान भी कह रहा है। अब बाज लोग कहते हैं नहीं, वो लोग ये कह रहे हैं, हम क्यों इस बात को माने। अगर वो कोई सही बात कह रहे हैं तो हमारा किसी के साथ इस बात में नहीं कि हमने किसी की मुखालफत ही करनी है। वो अगर कोई बात सही होगी तो जिसकी भी बात सही होगी हम उसको कहेंगे कि हाँ ये सही है। तो ये लोग भी मानते हैं कि इन ईसा अलैहि सलाम को उठाया गया। हाँ, मगर वो ये मान लेते हैं कि भाई उनको सूली चढ़ाया गया, फिर उसके बाद उनको उठा लिया गया, फिर वो इतने दिन के बाद वापस आए। ये कुछ इस तरह गुड फ्राइडे वगैरह भी इसके ऊपर मनाते हैं और ऐसे वैसे। तो एनी हाउ, यानी हम तो इस ये अकीदा रखते हैं कि उनको उठाया गया है, उनको मौत नहीं आई अभी, अभी वो फौत नहीं हुए, दुनिया में आएंगे वापस, अपनी तबई जिंदगी गुजारेंगे और उसके बाद वो फौत होंगे। तो वकान अल्लाह अजीजन हकीम। और ये अल्लाह ताला के जो तो दो असमा है ना, ये भी इस चीज की दलालत कर रहे हैं कि यहां पे रफा आ का मतलब है जिस्म और रूह के साथ उठाना। कैसे कैसे अजीजन हकीमा इस चीज की दलील है कि यहां पे यही मतलब है। अजीज का माना क्या? जबरदस्त, कुव्वत वाला, गलबे वाला, हकीम, हिकमत वाला। ठीक है, आप देखिए ना कि यहां पे अल्लाह ताला ने एक खरके आदत, यानी जो नॉर्मल चीज नहीं होती, उसका जिक्र किया। और उसके लिए कुव्वत, गलबा, जबरदस्त होना, इसकी जरूरत है। यहाँ पे गफूर रहीम नहीं आएगा। और इसके अंदर, इसके पीछे उसकी कोई हिकमत है कि ऐसा एक काम हुआ जो नॉर्मल नहीं होता दुनिया के अंदर। तो इससे भी पता, अगर उनको उनकी सिर्फ रूह को ही ऊपर ले जाया जाता तो फिर इसमें अजीज, कुव्वत और गलबे और जबरदस्त होने की क्या बात थी? सबकी रूहें जाती हैं। तो उनको उठाया गया और वो वापस आएंगे, ये हमारा अकीदा है। और ये अकीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है। एक हदीस नहीं है इस बारे में, बुखारी में हदीसें, मुस्लिम में हदीसें, सहा सित्ता में जो 6 किताबें ऑथेंटिक हैं उनके अंदर बेशुमार हदीसें हैं। यानी आप उनका इनकार नहीं फिर कर सकते। तवातुर के साथ हदीसें मुख्तलिफ चेन्स के साथ आ रही हैं, एक बंदे की भी नहीं है कि एक बंदे ने सिर्फ रिवायत की। और फिर जो इनकार करने वाले हैं वो फिर बुखारी का भी इनकार करते हैं, मुस्लिम का भी इनकार करते हैं, सारी किताबों का इनकार करते हैं, क्योंकि वो उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि कैसे उठाया गया। तो बेसिकली तो अल्लाह ताला की कुदरत कामिल और उसके आला कुल्ली शैइन कदीर होने पे शक हुआ ना फिर, या अल्लाह ये नहीं कर सकता। वा इम्मिन अहलिल किताब, और नहीं अहले किताब में से इल्ला मगर, ला युमिनन्न बिही कबल मौती, मगर अलबत्ता जरूर वो ईमान लाएगा साथ उसके कबल मौत ही, अपनी मौत से पहले। यानी यहां पे दो जमीरें आ रही, दो टू प्रोनाउंस है, एक ही बी ही के साथ और एक मौती ही के साथ। ये दो प्रोनाउंस किसकी तरफ जा रही हैं? एक कहा जाता है कि बी ही की जमीर इशारा कर रही है कि ईसा अलैहि सलाम को मान लेंगे, जो उनकी सारी उनके बारे में जो सारी कंफ्यूजन्स हैं कि वो सूली चढ़ाए गए नहीं चढ़ाए गए, या नाउजु बिल्ला वो अल्लाह का बेटा है, या वो नाउजु बिल्ला उनके बारे में वलदु जिना कहा गया, यानी जो भी उनकी हकीकत है, उनकी जात के बारे में, जो भी उनके बारे में इतनी सारी उनकी दुनिया से जाने के बारे में जो सारी मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हो जाएंगी, वो उनके ऊपर ईमान ले आएंगे कबल मौती ही, अपनी मौत से पहले। तो मौती ही से मुराद फिर अहले किताब है, कि यानी अहले किताब कोई भी मरता नहीं है जब तक कि वो इस चीज के ऊपर ईमान ना ले आए जो हकीकत है ईसा अलैहि सलाम की। ठीक है, समझ आ गई ये बात? यानी हर अहले किताब अपनी मौत से पहले ईमान ले आता है। मौत के बाद वैसे भी हक और बातिल खुल जाता है ना, मौत से पहले इंसान को पता चल जाएगा हकीकत अगली दुनिया की, कोई खुदा का बेटा नहीं हो सकता, ये भी पता चल जाएगा। मौत से पहले इंसान को ये सारी बातें जिसके बारे में वो आज दुनिया में शक में था, वो सारी खुल जाएंगी। ठीक है, इब्ने अब्बास ने भी इस आयत की तफसीर में यही फरमाया कि कोई यहूदी उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ना ले आए, यानी मरने से पहले, मतलब ये कहने का है, यानी जिस वक्त उसको आगे की आलम नजर आने शुरू हो जाते हैं ना, गैब की चीजें नजर आने शुरू हो जाती हैं, उस वक्त वो ईमान ले आता है। लेकिन उस वक्त का ईमान फायदा देगा नहीं, इसलिए कि जब गैब का पर्दा उठ जाता है तो अभी मौत नहीं आई, अभी वो मरा नहीं है, मगर गैब जब नजर आने लगे तो उसके बाद फिर इंसान का ईमान उसको फायदा नहीं देता, उस वक्त मान लेने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, और दूसरा, दूसरी क्या बात है? दूसरी बात यह है कि ही की जमीर जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही है कि कोई अहले किताब ऐसा नहीं है, मगर वो मान लेगा उनको, यानी ईमान ले आएगा, ईमान ले आएगा इस कुरान पे, इस दीन के ऊपर, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी बाज ने कहा, ये भी ही की जमीर जा रही है। किसकी मौत से पहले? वहां पे फिर मौती ही से मुराद कौन होगा? ईसा अलैहि सलाम। पहले मैंने जो आपको बात बताई, पहला कॉल क्या है, मौती ही से मुराद अहले किताब है, कि कुछ जितने अहले किताब है ना, ये सारे क्रिश्चियन जू से सब ईमान ले आते हैं मौत से पहले ईसा अलैहि सलाम के ऊपर, जैसा सही ईमान होना चाहिए। दूसरी में मैंने आपको क्या बताया कि भी ही यानी इस्लाम के ऊपर, या ईसा अलैहि सलाम के ऊपर, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के ऊपर, मौती ही से मुराद क्या होगा? ईसा अलैहि सलाम की मौत, यानी जब ईसा अलैहि सलाम इस दुनिया में आएंगे और आप दिज्जाल को कत्ल करेंगे, उस वक्त सारे मजहब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ एक इस्लाम मजहब होगा। ठीक है, उस वक्त कोई अहले किताब नहीं रहेगा, कोई यहूदी यहूदी नहीं रहेगा, कोई ईसाई ईसाई नहीं रहेगा, तो यहूदियों का क्या होगा? हाँ, इसके पीछे जरा अगर जाके देखें तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है, मलहमतुल कुबरा जिसको कहते हैं, जिसमें एक तरफ मुसलमान होंगे और दूसरी तरफ कोई और लोग होंगे, वो बड़ी जंग होगी, उसमें बहुत खून खराबा होगा, बहुत खून खराबा होगा। उसके बाद ही वो वक्त भी आएगा कि जब ईसा अलैहि सलाम नाजिल होंगे और इमाम मेहदी उस वक्त मुसलमानों की कयादत कर रहे होंगे, मुसलमानों के अमीर होंगे। उस वक्त की जो अहादीस सारी आती हैं, इनकी डिटेल आती है, तो हमें इतना भी पता चलता है कि ईसा अलैहि सलाम कैसे आएंगे, कैसे वो होंगे, क्या होगा। हदीस में आता है, बुखारी की हदीस है, उस वक्त क्या होगा जब तुम में मसीह बिन मरियम उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम्ही में से होगा, तुम्हारा इमाम तुम्ही में से। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो पहले ईसा अलैहि सलाम तो गुजर भी चुके हैं, तो आप क्यों फरमा रहे हैं कि तुम में मसीह उतरेंगे? इसका मतलब दोबारा आना है उन्होंने। हर एक को मौत का मजा चखना है, और ईसा अलैहि सलाम को भी मौत नहीं आई। फिर आगे अबू दाऊद और मुस्नद अहमद में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया कराम सब एक बाप के बेटे भाई की तरह है, माएँ जुदा जुदा है, यानी पैगाम तौहीद का सबका एक है, शरीयत एंड डिफरेंट है। ईसा बिन मरियम से ज्यादातर नजदीक मैं हूं, इसलिए कि मेरे और उनके दरमियान कोई और नबी नहीं, यकीनन वो उतरने वाले हैं, बस तुम्हें तुम इनकी पहचान रखो, दरमियाना कद है, सुर्ख सफेद रंग है, वो दो जैसे येलो सा कलर होता है, पीले रंग में रंगे हुए कपड़े ओढ़े और बांधे हुए होंगे, बाल खुश होने के बावजूद उनके सर से पानी के कतरे टपक रहे होंगे, वो खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया कबूल नहीं करेंगे, यानी अब ये नहीं हो सकता कि कोई कहे कि मैं गैर मुस्लिम ही रहूंगा और आप मुझसे जिजिया ले लें। होता है ना जिजिया, इस्लाम में हुआ है कि जिजिया ले लिया जाता है जब किसी गैर मुस्लिम मुमलिकत के फतह किया जाता है, तो वो अगर लोग वैसे ही रहना चाहें तो वो जिजिया दे के वैसे रह सकते हैं, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएंगे। इनके जमाने में सारे मजहब मिट जाएंगे, सिर्फ इस्लाम ही रहेगा। इनके जमाने में अल्लाह ताला मसीह दिज्जाल को हलाक करेगा, फिर जमीन पर अमन ही अमन होगा। यहां तक कि काले नाग ऊंटों के साथ, चीते गायों के साथ, भेड़िए बकरियों के साथ चरते फिरेंगे और बच्चे सांपों से खेलेंगे। मतलब ये किस चीज का है? इतनी प्रॉस्पेरिटी और इतना पीस होगा, इतनी सलामती होगी, कोई किसी से कोई खतरे में नहीं होगा, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 40 साल तक वो ठहरेंगे, फिर फौत होंगे और मुसलमान उनके नमाजे की जनाजे की नमाज अदा करेंगे। यानी वो फौत होंगे, कहा जाता है वो 32 ईयर्स के थे जिस वक्त के वो इस दुनिया से उठाए गए, और कुर्बे कयामत पे वो वापस आएंगे। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त के मेराज पे गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे बात की थी इस चीज की कि कयामत कब आएगी। ठीक है, तो उस वक्त इब्राहिम, मूसा, ईसा अलैहि सलाम से मुलाकात हुई थी, तो इन इन बातों को पूछा। इब्राहिम अलैहि सलाम ने भी कहा मुझे नहीं पता, मूसा अलैहि सलाम ने भी यही फरमाया, लेकिन ईसा अलैहि सलाम ने एक बात डिफरेंट फरमाई थी। उन्होंने कहा कि इसके आने का वक्त तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन मुझे ये पता है कि अल्लाह ताला ने मुझसे अहद कर रखा है कि वो ये कि दज्जाल निकलेगा, उसके साथ दो शाखें होंगी, और वो मुझे मेरे मुझे देख के पिघलने लगेगा जिस तरह सीसा पिघलता है। यहां तक कि पत्थर और दरख्त भी बोलेंगे कि ए मुसलमान, यहां मेरे पीछे काफिर है और उसको कत्ल कर दे। तो अल्लाह ताला ने अहद किया हुआ है कि अल्लाह ताला उनको उतारेगा कयामत से पहले, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की जो निशानियां बताई हैं, उन निशानियों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निशानी ये भी बताई है कि नज़ूले ईसा अलैहि सलाम, ईसा अलैहि सलाम उतरेंगे, ये भी एक निशानी है कयामत की निशानियों में से। और अब लोग कहते हैं आप लोग ईसा अलैहि सलाम का इंतजार कर रहे हैं, ये मुसलमानों की बात बता रहे हैं। अच्छा, फिर इंतजार करते रहे आप, हंसते हैं वो आगे से, यानी आप फिर इंतजार करते रहे। तो उन्होंने तो नहीं आना, तो ये सारी यानी सारी अहदीस का इनकार, मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो उरवा बिन मसूद की तरह है, और वो जब आएंगे तो दज्जाल को तलाश करके कत्ल करेंगे, फिर 7 साल तक लोग इसी तरह रहेंगे, कोई उनमें दुश्मनी नहीं होगी, ठंडी हवा शाम की तरफ से चलेगी, और सब फिर ईमान वाले फौत हो जाएंगे, जिसके दिल ने जरा सा भी ईमान होगा वो भी फौत हो जाएगा, और फिर उसके बाद कयामत आएगी। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में, यानी हमें इतना वक्त नहीं है कि मैं सारी अहादीस को आपके सामने रखूं, लेकिन तवातुर के साथ इतनी सारी अहादीस हैं जिनमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया कि अल्लाह ताला मसीह बिन मरियम को भेजेगा, और वो दमिश्क में, डमेस्कस सीरिया में, सफेद शर्की यानी ईस्ट की तरफ जो मीनारा है उसके पास दो चादरें ओढ़े हुए, दो फरिश्तों के परों पर बाजू रखे हुए उतरेंगे। जब सर झुकाएंगे तो कतरे टपकेंगे, जब सर उठाएंगे तो मोतियों की तरह वो कतरे लुढ़केंगे। जिस काफिर तक उनका सांस पहुंचेगा वो मर जाएगा, और आपका सांस वहां तक पहुंचेगा जहां तक निगाह पहुंचे। आप दिज्जाल का पीछा करेंगे, बाबे लुद के पास आके उसको कत्ल करेंगे। यानी इतनी डिटेल है कि किस तरह वो उतरेंगे, कहाँ पे उतरेंगे, वो जगह भी बताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो भी जगह बताई जहां पे फिर आपको पता है जब दज्जाल निकलेगा तो इसके साथ यहूदियों की बहुत बड़ी एक अस्फहान, एक इलाका ईरान में हदीस में आता है, वहां से दज्जाल निकलेगा, और उसके साथ वहां के अस्फहानी, स्फोटिक ज्यूज जिनको कहते हैं, तो वो इसके साथ होंगे। और जिस वक्त ईसा अलैहि सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे, उसके बाद ये यहूदियों का ये हाल होगा, बाज तो पहले ही मर चुके होंगे, लेकिन जो ये उसके साथ लगे हुए थे इनका ये हाल होगा कि ये जिस पत्थर के पीछे छुपेंगे वो पत्थर कहेगा कि ये मेरे पीछे जो यहूदी छुपा हुआ है, जिस दरख्त के पीछे छुपेंगे वो दरख्त कहेगा कि मेरे पीछे जो यहूदी छुपा हुआ है, तो मुसलमान उनको पकड़ पकड़ के मारेंगे, सिवाय एक दरख्त के, वो दरख्त समझ लें कि इनका फ्रेंड है, वो दरख्त है गरकत का दरख्त, वो दरख्त नहीं सिर्फ बोलेगा, वो इनको पनाह देगा। बोलेंगे से मुराद क्या है, वो तो वक्त ही बताएगा कि कैसे बोलेंगे या क्या एक्चुअली, वो उनको पीछे छुपने ही नहीं देंगे, वो खुद हट जाएंगे कि ये दिख जाए, इनको एक्सपोज कर देंगे। लेकिन एक हरकत का दरख्त जो है वो इनको पनाह देगा, वो इनको पीछे अपने छुपा लेगा। और आज वो दरख्त ये सबसे ज्यादा काश्त कर रहे हैं इसराइल में, सबसे ज्यादा वो दरख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है कि जो है ये दरख्त इनको पनाह देगा। तो इनको भी हदीसें पता है, वो हमसे ज्यादा इन हदीसों को मान रहे हैं, और हमारे लोग बाज उठ के इन्हीं अहादीस का इनकार कर रहे हैं। तो वो बदहवासी में जब भागेंगे ना, तो उनको कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, चाहे किसी पत्थर के पीछे, दीवार के पीछे, दरख्त के पीछे, किसी जगह के पीछे भी छुपेंगे तो वो कहेगी यहूदी है यहाँ पे, इसको मार दो। तो इस तरह से वो दुनिया के अंदर फिर रहेंगे। फिर उसके बाद वो भी अहादीस आती हैं जिनमें याजूज माजूज का जिक्र है, कैसे याजूज माजूज के वक्त में भी ईसा अलैहि सलाम जमीन में मौजूद होंगे, कैसे उनका मुकाबला होगा, फिर उसके बाद भी कैसा दौर आएगा। इतनी सारी हदीसों को इनकार कर देना, कहना कि ये है ही नहीं है, और इसका मजाक बना लेना, ये और नहीं, कुफर की बात नहीं है तो और क्या है। कुछ तो अपने एजेंडा की वजह से करते हैं ऐसा, क्योंकि उनको बताना है कि हमने मिर्जा कादियानी को नबी मान लिया है, तो वो इस वजह से करते हैं। दूसरे ऐसे हैं कि जिनको हदीस का ही इनकार है, तो वो मानते ही नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे फितनों से भी महफूज रखे। तो यहां से हमें पता चला कि ईसा अलैहि सलाम दुनिया में रहेंगे, उसके बाद वो फौत होंगे, और ये भी है, अलमा कहते हैं कि उनकी जो जगह है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जगह मौजूद है जहां पे उनको दफनाया जाएगा। और ये भी एक बात समझे, अहादीस से ये भी पता चलता है कि वो आके हज और उमरा भी करेंगे, और उस वक्त पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के तो और कोई होगा ही नहीं ना मजहब, और वो आपकी उम्मती बन के आएंगे, नबी नहीं बन के आएंगे। तो ये बात ट्रू है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुवत खत्म हो गई है, कोई और नबी नहीं आएगा, तो वो भी उम्मती ही के रोल में आएंगे, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे ही चलने वाले होंगे, कोई अपना नहीं, कोई अलग से बात लेकर आ जाएंगे। तो वो हज उमरा भी करेंगे, लबैक पढ़ेंगे, ये खंजीर को खत्म कर देंगे, सलीब को तोड़ देंगे, ये सारे काम उन्होंने करने हैं। और इस कदर उस वक्त माल होगा कि कोई लेने वाला नहीं होगा, इतना माल होगा। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में उस जात की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके कब्जे में मेरी जान है, अनकरीब तुम में इब्ने मरियम नाजिल होंगे, वो अहकामात नाफिज करेंगे यानी शरीयत का निफाज करेंगे, अदल करने वाले, सलीब को तोड़ डालेंगे यानी ये साइन ही खत्म हो जाएगा ना, जिन लोगों का ये साइन है इसको तोड़ देने का मतलब क्या है, खत्म, उनका मजहब खत्म, खंजीर को कत्ल कर देंगे यानी अब नहीं ये इसको कोई खा सकेगा, जिजिया मौकूफ कर देंगे, इस कदर माल लुटाएंगे कि इसको कबूल करने वाला कोई नहीं होगा। हत्ता के एक सजदा करना दुनिया और दुनिया से ज्यादा बेहतर होगा। और तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो, और यही फिर आयत हजरत अबू हुरैरा ने पढ़ के बताई, व इम्मिन अहलिल किताबी, यानी हर शख्स फिर ईसा अलैहि सलाम की मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा। तो इससे पता चलता है कि ईसा अलैहि सलाम आने हैं वापस, तभी तो लोग उनके ऊपर ईमान लाएंगे ना। और यौम अल कियामत यकूनु अलैहिम शहीदा, और कयामत के दिन वो उनके ऊपर गवाह बनेंगे, यानी कयामत के दिन भी ईसा अलैहि सलाम इस चीज की गवाही देंगे कि अल्लाह मैंने पैगाम पहुंचा दिया था। कयामत के दिन जैसे बाकी अंबिया गवाही देंगे, अपने लोगों पे गवाह बनेंगे, इसी तरह ईसा अलैहि सलाम भी गवाह बनेगा। और इसका बड़ा तफसील से जिक्र आता है सूरतुल माईदा के आखिर के अंदर, कि वहां पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाएगा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था, अंत कुलता लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, आपने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो। तो वो ईसा अलैहि सलाम अर्ज करेंगे, अल्लाह अल्लाह तू पाक है, मुझे कैसे ये बात जेब देती कि मैं ऐसी बात कहूं, जिसके कहने का मुझे कोई हक नहीं। अगर मैंने कहा होता तो तुझको इल्म होता अल्लाह, तू मेरे दिल के अंदर की बातों का हाल जानता है। मैं नहीं जानता तेरा हाल, मगर तू तो मेरा हाल जानता है। तू अल्लामुल गुयूब है, गैबों का जानने वाला है। मैंने इनसे सिर्फ वही कहा था जो तूने मुझसे कहने को कहा था, कि तुम सब अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी है। और मैं इन पे गवाह रहा जब तक मैं इनमें रहा, फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तुझे ही पता है कि फिर इन्होंने पीछे क्या किया। तो ये आयत आयत नंबर 116 और 117 में मैंने आपको बताई है कि ईसा अलैहि सलाम ये बात उस दिन कयामत के दिन फरमाएंगे कि अल्लाह मुझे तो यही इसी चीज का पता है, मैं तो नहीं और कुछ जानता। वो गवाही देंगे कि अल्लाह मैंने सारा तौहीद का पैगाम ही इनको पहुंचाया। फबीतुल्मिम मिनल्लदीना हादू, तो जुल्म करने की वजह से इन लोगों की तरफ से जो यहूदी बन गए थे, हर रमना अलैहिम तय्यिबातिन, हमने हराम कर दी इन पे पाकीजा चीजें, हिल्लत लहम जो हलाल की गई थी इनके लिए, यानी वो चीजें जो हलाल थी वो भी हमने इनके ऊपर हराम कर दी। किस वजह से? इनके जुल्म की वजह से। उनका जुल्म क्या था? इनके गुनाह, इनकी नाफरमानियां, इनकी यही जो हरकतें हैं जो सारी बताई गई हैं, इसकी वजह से अल्लाह ताला ने हराम कर दी वो चीजें भी जो कि हलाल थी। इससे पता चलता है कि इंसान के बाज गुनाह ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से हलाल भी हराम हो जाता है। जैसे वो नहीं है, एक हदीस में आता है कि जब फहाशी किसी माशरे में बढ़ जाती है तो अल्लाह ताला ताऊन और इसकी जैसी बीमारियां उस माशरे में पैदा कर देते हैं। ऐसी सी बीमारियां जो उनसे उनके आबाओ अजदाद ने कभी सुनी भी नहीं होती, ऐसी बीमारियां। और बिल्कुल ये सही आज समझ आती है हमें हदीस के, वाकई जब फहाशी बढ़ गई है तो आज हम वो बीमारियां देख रहे हैं जिनका हमारे बाप दादा ने तो नाम तक नहीं सुना था। उनको तो कानों कान भी खबर नहीं थी कि ऐसी कोई बीमारी हो सकती, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी। तो अल्लाह ताला की तरफ से भी ये दुनिया में एक सजा होती है गुनाहों की, कि अल्लाह ताला बाज ऐसी चीजों को जो हलाल होती है उनको ही हराम कर देता है। और देखिए यहूदियों के साथ हुआ था, सूरह अनाम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उन पे नाखून वाले जानवर हलाल कर दिए थे, और गाय और बकरी में से भी इन दोनों की चर्बियां उन पे हराम कर दी, और सिवाय जो पुश्त पे लगी हो या जो आंतड़ियों में हो या जो हड्डी से मिली हो। क्यों? ज़ालिका जज़ैनाहुम बिबग़यिहिम, ये हमने उनको बदला दिया था, सजा दी थी उनकी शरारतों की, उनके फिस्को फुजूर की, उनकी बगावतों की, उनके बद आमालियों की ये सजा दी। तो इससे पता चलता है हम जब ये जो गुनाह है ना, इनका आखरत में तो है ही जो इनका वबाल है, इस दुनिया में भी इंसान भुगतता है। अब बाज देखें, बाज दफा ऐसे हो जाते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि वही चीजें, फसल चीनी नहीं इंसान खा, मीठा नहीं इंसान खा सकता, चीनी तो नहीं, मीठा नहीं इंसान खा सकता, या नमक नहीं इंसान खा सकता, या और कोई ऐसी गोश्त नहीं खा सकता, ऐसी ऐसी बीमारियां आजकल आ गई। तो ये नहीं कि वो कोई बंदा स्पेसिफिक, अब आप किसी को कहना शुरू हो जाए ये जरूर कुछ गुनाह करता होगा इसीलिए अल्लाह ने इसके लिए हराम कर दी, नहीं। ओवरऑल जब माशरे के अंदर बुराइयां पैदा होती हैं ना, गुनाहों में लोग मुलव्वस हो जाते हैं, तो फिर इस किस्म की बीमारियां आम हो जाती हैं। وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, और सद का मतलब क्या है? सद जो होता है ना, इसका मतलब होता है खुद भी रुकना और दूसरों को भी रुकना। तो ये खुद तो रुकते थे, इन्होंने कितने बहाने किया, पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले पारे में भी, कि किस किस तरह ये लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे, कभी किसी हीले से, कभी किसी बहाने से, कभी कहते सुबह को ईमान लिया शाम को कुफर करना, लोगों को कहेंगे हमें तो इस दीन में कुछ नहीं मिला। वो अख्तिहिमुर रिबा, और उनके सूद लेने की वजह से अल्लाह ने उनके ऊपर लानत जो की है ना, उनके सूद खाने की वजह से, वकद नहु अनु, जबकि उनको इससे मना किया गया था। इसका मतलब ये सूद हमारी शरीयत में ही सिर्फ हराम नहीं है, इनके यहां भी हराम है। आज ये इतने सरप्राइज होते हैं ना कि आप इंटरेस्ट से ऐसे करते हो, और ये हालांकि इनकी शरीयत में कुल्लम कुल्ला हराम है, सूदी लेन देन। इसी वजह से देखें, जैसे हीला साजी की आदत है इनको, तो इन्होंने अब क्या इसका बहाना किया कि इन्होंने कहा नहीं, सूद हराम है लेकिन यहूदी का यहूदी से लेना हराम है, गैर यहूदी तो उसको तो वो इंसान ही नहीं समझते ना, कहते इंसान जैसी कोई चीज है लेकिन इंसान नहीं है, असल इंसान तो हम ही हैं। तो इनसे आप ले सकते हैं, इनको आप कुछ भी नुकसान पहुंचाए उससे उसमें आपकी पकड़ नहीं होगी। वह अकलीहिम अमवाल अन्नासी बिल बातिल, और लोगों के माल बातिल तरीके से खाते थे। अब समझ नहीं आती कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हमने ना की हो, रिबा को हमने जायज कर लिया, लोगों के माल बातिल तरीके से हमने खाने शुरू। बातिल तरीके में क्या है, सूद तो है ही बातिल, बेईमानी के साथ, रिश्वतखोरी के साथ, धोखाधड़ी के साथ, झूठ के साथ, चोर बाजारी के साथ, लूट मार के साथ, फ्रॉडों के साथ, किस किस तरह माल खाए जाते हैं ऐसे ऐसे तरीकों के साथ, दूसरे बेचारे को पता ही नहीं चले कि मुझे लूट भी लिया गया। तो ये लोगों के माल ऐसे खाते थे। वह आतदना लिल काफिरीन मिनहुम अजाबन अलीमा, जो इनमें से काफिर हैं उनके लिए अजाब अलीमा। इसका मतलब है कि कोई मोमिन भी होंगे, ये बात समझ आती ना। ये नहीं कहा गया आतदना लिल काफिरीन अजाबन अलीमा, आतदना लिल काफिरीन मिनहुम, जो इनमें से काफिर हैं, यानी सब नहीं है, जो इनमें से काफिर हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो इनमें से जो फिर ईमान वाले हैं उनके लिए क्या है? तो आगे उनकी बात आ रही है, लाकिन रासिखून फिल इल्म, बेशक वो लोग, लेकिन वो लोग जो रासिख हैं इल्म में, यानी उनको कमांड हासिल है इल्म में, यानी वो पक्के हैं अपने इल्म में। उनको पहले भी हमने रासिखून फिल इल्म के बारे में पढ़ा था ना, ये बस सतही इल्म नहीं, शैलो नॉलेज नहीं है, गहरा इल्म। सतही इल्म का फायदा नहीं होता, इधर उधर से बातें इकट्ठी कर ली, इस लेक्चर से सुन ली, उस लेक्चर से सुन ली, और फिर अपना एक लेक्चर बना के चलो जी हमने दे दिया, ये नहीं कोई बात होती। गहराई में उतरना, मजबूत इल्म जिसमें शक व शुबा ना हो, जैसे दरख्त भी रासिक कौन सा होता है, जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं, जमीन के अंदर तक गहरी गई होती हैं, तो इल्म भी ऐसे ही है। अल्लाह अकबर। तो लेकिन सबके लिए दर्दनाक अजाब नहीं है, वो जो रासिखूना फिल इल्म मिनहुम, इनमें से जो रासिखूना फिल इल्म में ना, जो समझते हैं वाकई अपनी किताब को, गहराई में उसका इल्म रखते हैं। वल मोमिनुना, जो ईमान लाने वाले हैं इनमें से, वो किस पे ईमान लाते हैं, युमिनुना बिमा उन्जिला इलैका, वो ईमान लाते हैं उस पर भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, यानी इस कुरान पर ईमान ले आते हैं वो, क्योंकि उनका इल्म गहरा होता है। वमा उन्जिला मिन कबलिक, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, यानी जो किताबें पहले आई, तौरात जबूर पे भी ईमान लाते हैं। वल मुकीमीन अस्सलाता, और जो कायम करने वाले हैं नमाज को। वल मुतून अज़्ज़कात, और जो देने वाले हैं जक़ात को, यानी इनमें भी नमाज और जक़ात तो इनमें भी थी, लेकिन उसके बाद इस्लाम ले आते हैं, इस कुरान पे ईमान ले आते हैं, इस नमाज जक़ात का एहतमाम करते हैं। वल मुमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर, ये नहीं सिर्फ कहा गया कि सिर्फ कलमा ही पढ़ लेते हैं, इसका मतलब कलमा पढ़ना सिर्फ काफी नहीं होता जब तक आगे अमल ना करें, और ईमान लाते हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। उलाइका सनुतीहिम अजरन अदीमा, ये सारे यानी एक जैसे नहीं है, इनमें से ऐसे भी लोग हैं जिनको हम अनकरीब अजरे अजीम देंगे। यहां से पता ये चला कि इतनी लंबी इनकी चार्जशीट आई है ना, उनके उस सवाल के जवाब में आई है कि ये आपसे क्या सवाल कर रहे हैं कि आप हमें उतार के दिखाएं, इनके खुद हालतें देखें, इन्होंने सूद खाया जबकि इनको इससे मना किया गया था, इन्होंने लोगों के माल बातें तरीके से खाए, इन्होंने लोगों को रोका दीन के रास्ते से, इन्होंने कहा कि हमने ईसा अलैहि सलाम को कत्ल ही कर दिया, यानी कितनी बड़ी बात की, इन्होंने बोहतान बांधा हजरत मरियम अलैहि सलाम पे, इन्होंने ये सारे काम किए ना, इसकी वजह से अल्लाह ताला ने बताया कि ये इनको जेब नहीं देता कि ये आपसे ये सवाल करें कि आ जी हमारे हमें लाके दिखाएं, जैसे एक मजाक ही हो गया कि हमें ऊपर से उतरता हुआ लाके दिखाएं, तो ये इनको सूट नहीं करता। हाँ, इनमें से कोई लोग हैं भी जो अच्छे हैं, जो ये काम करने वाले हैं, मगर अक्सरियत उन लोगों की है। अब अगली जो आयतें आ रही हैं उनमें अल्लाह ताला इस बात का जवाब देंगे, जो ये बात थी ना, जो उनका सवाल था, वो हम अगली आयत में उसका जवाब पढ़ेंगे। अभी तक सिर्फ ये बताया गया है कि ये किसी लायक नहीं कि ये आपसे इस किस्म का मुतालबा करें, जबकि इनकी खुद की हरकतें क्या थी, इन्होंने आज तक खुद क्या किया था। मगर देखें अल्लाह ताला का इंसाफ कितना है कि अल्लाह ताला ने आखिरी जो 162 आयत में ये फरमान बता दिया कि लेकिन सारे ऐसे नहीं है, इनमें कुछ सही भी लोग हैं। तो ये पांचों उंगलियां देखें कभी भी एक बराबर नहीं होती, हमेशा किसी जगह में खैर वाले लोग भी होते हैं, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला इन आयात से हमें सीखने, समझने और हिदायत पाने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما